ಬರ್ರಿ. विषय 321वीं गाथा से लेकर 355 नंबर तक की गाथा तक है, जिसमें हम लोग 321 से 344 नंबर तक गाथा की चर्चा कर चुके हैं। 332 से 344 तक जो प्रकरण चलता था, जिसकी चर्चा कल शाम के प्रवचन में हमने की थी, उसमें सांख्य मत वालों की मान्यता का खंडन किया। दार्शनिक प्रकरण है, आत्मा करता है या करता है, मुझे लगता है आत्मा को करता कहना मतलब बहुत बड़ा पाप कर देना है, ऐसा लगता है। आत्मा करता कैसे हो सकता है, आत्मा का करता है भाई साहब। आचार्यों ने जगह जगह शास्त्रों में आत्मा को कर्ता लिखा है। द्रव्य संग्रह दूसरी गाथा, जीवो उमोगमऊ अमूर्तित कर्ता सदेश परिमाणु और भोक्ता संसार को सिद्धोषों में छोड़ दी। मैंने 9 बातों के आधार पर आत्मा का स्वरूप बतलाया नैमिषारिक सिद्धांत जी ने द्रव्य संग्रह में, और उसने आत्मा को कर्ता लिखा, अकर्ता नहीं, भोक्ता लिखा, अभोक्ता नहीं, यह आत्मा कर्ता है। और सांख्य मत वाले कहते हैं जो आत्मा को अकर्ता मानते हैं, तो फिर साथ शास्त्रों ने आत्मा को अकर्ता नहीं तो लिखा है, इस समय काल ग्रंथाजी आज ने ही आत्मा को अकर्ता भी लिखा है। ये अकर्ता कहने से तुम सर्वथा अकर्ता मत मान लेना, हमारा जो जैन दर्शन है ये जैन दर्शन अनुकांतवादी दर्शन है। समंत भद्र स्वामी कहते हैं सर्वथा नियम त्यागी यथा दृष्टि अपेक्षित है। हमारे यहाँ तो सर्वथा के नियम का त्याग, कोई बात सर्वथा नहीं, एकांतवाद नहीं, बिल्कुल भी आत्मा अकर्ता से करता। कि यदि तुम सर्वथा अकर्ता मानते हो तो हमें ये बताओ ये जो परिणाम होते हुए दिखाई दे रहे हैं, ये सब जो परिस्थितियां बन रही है इनका कर्ता कौन है? तो सांख्य मत वालों ने करण दे दिया प्रकृति करे, मैं कहता हूँ तू अपना करता तो क्यों है और मानता ये है कि ये कर्म नहीं किया है, अपराध किया तूने और अपने अपराध का कर्तृत्व तूने लगा दिया दूसरे के माथे पर, तो तू स्वयं मैं तो बने रहता है, महा अपराध है ये, ऐसी अनितियां नहीं चलेगी, ये चलने वाली बात नहीं। 332 नंबर गाथा को जो प्रकरण शुरू किया था उसमें कर्म करने वाले हैं, कर्म करने वाले हैं, कर्म ही करते हैं, कर्म ही करते हैं। यदि अपने को उस असलियत का भान नहीं हो तो आज गाथाएं पढ़ने पर तो ऐसा लगे कि मानो सच में कर्म ही कर रहे हैं। 332 से लेकर 339 तक जो आज गाथाएं हमने पढ़ी उनको पढ़ करके ऐसा लगता है बात तो सही है, कर्म का ही है तो हम क्या करें। नींद आना कर्म का हो जाए, जागना कर्म का हो जाए, ज्ञान होना नहीं होना कर्म का हो जाए, ये तो पुण्य पाप का फल है। जितनी परिस्थितियां बनती है अपने अपने कर्मों का फल सबको मिलता है, कर्म के हिसाब से होता है। कोई व्यक्ति चक्रवर्ती हो गया तो कैसे हो गया, अपने पुण्य की वजह से। हमारी बात में नहीं है तो क्या ऐसा कर्म का हो जाए, तो कर्म के वजह से होता है ना। चक्रवर्ती कैसे बनता है कोई व्यक्ति चक्रवर्ती दो, हम तो ऐसी बात भी कहते हैं कि तीर्थंकर भी कोई बनता है तो कर्म की वजह से बनता है। तीर्थंकर नाम का एक प्रकृति है, वो जिसके उदय में आती है वो तीर्थंकर बनता है। तो कौन करने वाला जो कर्म प्रकृति आई करती है, स्वर्ग में कौन ले जाता है, नरक में कौन ले जाता है, मनुष्य की गतियों में कौन घुमाता है, कि कर्म ही घुमाता है। लेकिन बाबू जी की वो पंक्ति एक ही पंक्ति में ये सारी मान्यताओं का खंडन कर दिया, कर्म करता है, कर्म करता है, कर्म करता है, यह मिथ्या भ्रांति रही हुई। दूध के छंद का वो एक पंक्ति स्पष्ट कर दिया उन्होंने, आज तक अनादि काल से भी यही मानता रहा कि कर्म ही करता है, कर्म ही करता है और स्वयं ही हो जाता है, आत्मा तो करता है, आत्मा तो कुछ करता नहीं। सांख्य दर्शन में भी ऐसा ही माना गया है। हमने कल बात कही थी आपसे सांख्य दर्शन के संदर्भ में, सांख्य मत कौन सा है, कैसा है सांख्य मत, कैसा मानता है? दो तत्व है मूल, प्रकृति और पुरुष। प्रकृति से दो ही तत्व और पुरुष अकर्ता अभोक्ता बिल्कुल निष्क्रिय कुटस्थ, बिल्कुल ऐसा एक तत्व है जो कुछ करता धरता नहीं है, ऐसा मानना वो सांख्य मत की कल्पना है। हमारे यहाँ आत्मा अकर्ता तो है लेकिन करता भी है, आत्मा भोक्ता तो है लेकिन भोक्ता भी है। फिर इस तरह से 339 गाथा तक जब ये बात कही तो 340 नंबर गाथा के अंदर ये बात कही कि ये सांख्यों की कल्पना थी। भाई साहब कोई श्रवण ऐसा मानता हो तो उसे जैन मुनि मत मान लेना। अब देखो श्रवण शब्द का प्रयोग किया, अब आप वक्ता मान लो, आप विद्वान समझ लो कि कोई विद्वान यदि इस बात का प्रतिपादन करे कि आत्मा तो कर्म था करता है तो शुद्ध जाएगी मात्र आत्मा शुद्ध होगा, तो कहने तेरी मान्यता भी रहती है। इतनी जब बातें कही गई और आत्मा को अकर्ता कहने वाली बातें कहने पर सांख्य मत वाला कह दिया तो थोड़ा सा घबरा दी, नहीं नहीं आत्मा करता है, करता हम करता मानते हैं ना, कैसे नहीं मानते, हम करता भी मानते हैं। वो किसका करता है, ये आत्मा आत्मा को करता है, क्या कहो आत्मा आत्मा को करता है, तो क्या तेरा ऐसा मानना भी मिथ्या है। अरे बाबा आत्मा कर को करता है ये मानना तो मिथ्या था, अब आत्मा आत्मा को करता है ये मानना भी मिथ्या है, क्या बिल्कुल मिथ्या है। क्यों है मिथ्या, क्योंकि तू द्रव्य रूप आत्मा का कर्ता आत्मा को मानता है, पर्याय का कर्ता आत्मा को माने तब तो बात बराबर है, लेकिन तू ये कहता है कि आत्मा ने द्रव्य आत्मा को ही किया, आत्मा ने आत्मा को किया, तो समस्या ये है कि आत्मा तो नित्य है, उसको क्या कहते हैं? किसी व्यक्ति का या किसी वस्तु का किसी क्रिया का जन्म हुआ तो हमने कहा इसको किया किसी ने, और कोई वस्तु बनी बनाई है तो हम कहेंगे उसको बनाया, फिर बात तो बनती नहीं। आत्मा तो अकृत्रिम वस्तु है ना, आत्मा तो नित्य है ना, आत्मा तो ध्रुव है ना, आत्मा तो परमाणु भाव स्वरूप है ना, आत्मा तो असंख्यात प्रदेश है ना, हम उसमें करने करने का क्या सवाल है? हमने कहा सुमेरु पर्वत के ऊपर 16 अकृत्रिम चैत्यालय है, नंदीश्वर जी ने 52 अकृत्रिम चैत्यालय है, पता है आपको किसने बनाया है? कि देवों द्वारा बनाए हैं, अकृत्रिम है। हाँ अकृत्रिम तो है वो सब चैत्यालय, लेकिन देवों ने बनाया है उनको। पंडित जी तुम्हें पता है अकृत्रिम किसे कहते हैं? अकृत्रिम उसे कहते हैं जिसे कोई नहीं बनाता हो, उसे अकृत्रिम कहते हैं। तो हमने कहा आत्मा को आत्मा ने बनाया है, तो तुम्हें पता है आत्मा कैसा है? कि आत्मा तो नित्य है, नित्य है माने कब से? 10 साल से, 1000 साल से, 1000 सालों से। तो नहीं, क्या बात करते हो 1000 सालों से, अनादि से है। अनादि पहले तो किसी ने बनाया होगा, उस समय आत्मा ने आत्मा को बनाया था। कि अरे भैया तू आत्मा के नित्य स्वरूप को नहीं पहचानता, इसलिए ऐसी बात करता है। आत्मा नित्य है कि नहीं? सब आत्मा नित्य तो है, लेकिन जो उसकी फॉर्म बदलती है ना वो मैं करता हूँ। जैसे समझो हम ऐसी बात कहें कि हमने हलवा बनाया, खीर बनाई, तो कोई व्यक्ति नहीं कहेंगे सर खीर में तुमने क्या बनाया, हलवे में क्या बनाया? वो तो आटा था, और आटा तो तुम बनाते नहीं हो, तो तुम उसमें हलवा बना सकते नहीं हो, क्योंकि आटे को यदि तुमने नहीं बनाया तो हलवे को क्या बनाया? तो अज्ञानी ये कहता है या वो कर्ता मानने वाला व्यक्ति ये कहता है कि साहब आटे को तो नहीं बनाया, वो तो था पहले से, लेकिन मैंने उसकी फॉर्म बदल दी। हमने क्या किया? हमने मेहनत करके उसको उसमें कढ़ाई में डाला, और फिर उसको सीखा, गर्म किया, उसको ऐसा किया, उसमें मीठा डाला, फिर हमने हवा बना दिया। तो आटे को तो नहीं बनाता, लेकिन जो उसकी अवस्था बदल रही है उसको तो बनाता है ना। तो ऐसे ही आप कह रहे हो आत्मा नित्य है, उस नित्य आत्मा को ये आत्मा करता नहीं है, तो उसके प्रदेशों को हम ज्यादा करके संकोच विस्तार ऐसा कुछ करता है तो आत्मा करता है। आरंभ जाता के अंदर कही ये बात। तो आचार्य देव ने कहा कि सुन, आत्मा के प्रदेश असंख्याति है, पहले भी असंख्याति थे, अभी भी असंख्यात है, भविष्य में भी असंख्यात रहेंगे, निबोध शरीर में चला जाए तो भी असंख्यात प्रदेशी है, सिद्ध बन जाए तो भी असंख्यात प्रदेशी है, लोक पूरण भविष्य तो भी असंख्यात प्रदेशी है, महामक्षी के शरीर में चला जाए तो भी असंख्यात प्रदेशी है। आत्मा तो सदा काल असंख्यात प्रदेश नहीं होता है, आत्मा के असंख्यात प्रदेश कोई ऐसे स्कंद जैसे नहीं है। समझ आ रही है बात? मेरे मान लो एक पुस्तक है कोई भी, ये पुस्तक में जो प्रदेश है परमाणु है, बोले पहले तो ये तेज अलग अलग थे, और वो ये बाइंडर में कहता है कि मैंने उन तेजों को अलग अलग को इकट्ठा किया और इकट्ठा करके इसको पिनअप किया और इसकी बाइंडिंग करके मैंने ये एक किताब बना दी। तो पहले तेज अलग अलग थे और बाद में इनको एक करके मैंने बना दिया। पहले से आत्मा के प्रदेश पहले अलग अलग थे, फिर मैंने उन सारे प्रदेशों को मिला करके आत्मा बना दिया। तो क्या ऐसा होता नहीं है? क्योंकि आत्मा असंख्यात प्रदेश की सदा से ही है। बोले संकोच विस्तार, बोले कितना भी संकोच हो और कितना भी विस्तार हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सत्वा सूत्र महाशास्त्र 5वें अध्याय का 16वां सूत्र है, प्रदेश संहार कर्माभ्याम प्रदीपवत्। आत्मा में प्रदेशों का संकोच विस्तार होता है, हम ज्यादा होते हुए से दिखते हैं, लेकिन वस्तु स्थिति यह है कि आत्मा का न तो संकोच होता है और न विस्तार होता है, ये वस्तु स्थिति है। समझ आ रही है? आत्मा के असंख्यात प्रदेशों की क्या प्रयोजन है? हमारे शरीर में हो या बच्चे के शरीर में हो, दोनों के प्रदेश बराबर हो। दोनों का चेत बराबर है तो तुम्हें किया क्या ये बता। आत्मा का विस्तार तो लोक प्रमाण। अच्छा कितने ऐसा आत्मा के प्रदेश ये बता दो आप, प्रदेशों की संख्या कितनी है जो कम ज्यादा नहीं होती? असंख्या। असंख्यात कितनी? असंख्यात कितनी? असंख्यात का ऐसा फिगर बतलाओ। असंख्यात तो असंख्यात प्रकार है भाई, असंख्यात बहुत प्रकार का होता है, लेकिन कितना असंख्यात? हमें ऐसी संख्या बतलाओ जिसमें आत्मा का एक प्रदेश भी कम नहीं और जिससे आत्मा का एक प्रदेश भी ज्यादा नहीं। तो 343 धनराजु प्रमाण जो लोक है, उस लोक में जब आत्मा फैले तो लोकाकार के एक एक प्रदेश पर आत्मा का एक एक प्रदेश हो तो आत्मा की साइज कितनी हुई? बोले लोक प्रमाण असंख्या। द्रव्य संग्रह ने बात कही, दसवीं गाथा द्रव्य संग्रह भी कहे, अणु बुद्धि प्रमाण उपसंगार अपेगा असम अनुभव नित्य है जो असंख्य देश हुआ। योग काल की 24वीं गाथा ने कही, व्यवहार देह प्रमाण और परमार्थ लोक प्रमाण है। व्यवहार से आत्मा शरीर प्रमाण है और नित्य से आत्मा कितना बड़ा है कि लोक प्रमाण है। लेकिन सुनो, क्योंकि नित्य से लोक प्रमाण का है ना, इसके संदर्भ में कुछ समाज में मिसअंडरस्टैंडिंग चलती है, कुछ गलत फहमी चलती है। कौन से समाज में समझ लो, आत्मा के संदर्भ में गलत फहमी कौन से समाज में चलेगी? जो आत्मा की चर्चा करते हैं वही से चलेगी ना। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि तुम आत्मा के स्वरूप का एकांत में बैठकर चिंतन करो और ऐसा अनुभव करो कि मैं जो आत्मा है पूरे लोक में ऐसे व्याप्त हूँ, लोकव्यापी है। इस लोकव्यापी का है ये प्रदेशों की संख्या की अपेक्षा से कहा है। हो सकता है अनादि काल से अनंत काल तक ये आत्मा लोकव्यापी कभी हुए ही नहीं। बस जो निश्चय से लोक प्रमाण कहा है, वहाँ निश्चय का अर्थ भी ऐसा है कि वो कभी लोक प्रमाण होगा, जब कभी भी लोक प्रमाण नहीं फैले और फिर भी निश्चय से लोक प्रमाण। अब निश्चय का मतलब क्या हुआ? गणना की अपेक्षा से निश्चय है। निश्चय का आत्मा लोक में व्याप्त तो ऐसा नहीं। तो इन्होंने कहा कि ये जीव का लोक प्रमाण है, तू उसमें कम ज्यादा करता नहीं है, इसलिए तू जीव का कर्ता नहीं हो सकता। ये तो जबरदस्ती अकर्ता अकर्ता कहने पर भी गलती बतला रहे थे ना, तो तूने कर्ता कहने पर एंगल बदल दिया। क्या सब निश्चय से लोक प्रमाण अभी नहीं है, कभी नहीं हो, कभी नहीं होगा। आज ये लेना कि ये जीव संसार गज्ञा में परिक्रमण करता हुआ सिद्ध गज्ञा की प्राप्ति कर ले रहे और अनंत काल तक सिद्ध गज्ञा में रहे, तो ये लोक प्रमाण कभी हुआ ही नहीं। हाँ, केवली समुद्घात नहीं कर पाए। सभी जीवों के केवली समुद्घात होता है या नहीं होता है, इस संदर्भ में आचार्यों के दो मत है। एक आचार्य कहते हैं कि ये जीव नियम से केवली समुद्घात करता है और दूसरे आचार्य ये कहते हैं कि केवली समुद्घात नहीं करता। उसमें भी बात अलग अलग तरह से व्याख्या से अपने इस बात को सिद्ध किया गया कि भाई वास्तव में कोई जरूरी नहीं है कि जीव को केवली समुद्घात हुई, उसके बिना भी जीव को निर्वाण की प्राप्ति हो सकती है। और ऐसा भी उल्लेख आया है कि एक ही समय में मैक्सिमम 108 जीवों को निर्वाण की प्राप्ति हो सकती है। सुना आपने? पढ़ो 6 महीने 8 समय में 108 जीव जो निर्वाण की प्राप्ति करते, 6 महीने 8 समय में 108 जीव, तो 6 महीने में एक भी जीव निर्वाण नहीं जावे तो 8 समय में 608 जीव मोक्ष जा सकते। 6 महीने एक भी जीव मोक्ष नहीं गया, क्योंकि देखो ऐसा लगता है ना अपने को 6 महीने 8 समय की बात कर रहे हो, 6 महीने ही कह दो यार 8 समय में क्या दम है, 8 समय कितना सा होता है? एक सेकंड में असंख्यात समय है, सेकंड के असंख्यात समय हो जाते हैं। अब कहो 8 समय में अब क्या दम है, तुम्हें तो 6 महीने में 608 जाते हैं, 8 समय की बात मत करो। नहीं भाई साहब, ये करना नहीं होंगे, 8 समय कहना पड़ेगा, क्योंकि 6 महीने तक एक भी जीव मोक्ष नहीं जाए तो 8 समय में 608 जीव मोक्ष जा सकते हैं और मुझे 8 समय की बात कही है, उस 8 समय की भी पूरी गणना बतला दी है। पहले समय में 32, दूसरे समय में 48, फिर 5, फिर 72, फिर 84 और फिर 96। अब दो समय बचे, पूरे उसमें 108 और 108। तो एक समय में ज्यादा से ज्यादा जीव मुक्त जाएंगे कितने जा सकते हैं? 108। और आगम ने यह उल्लेख किया है कि केवली समुद्र घाट मैक्सिमम एक समय में 40 जीवों को हो सकता है, इसलिए वो अनिवार्य नहीं है। ये बात घटित होती अनिवार्य नहीं है कि जिनको केवली समुद्र घाट नहीं हो, निर्माण की प्राप्ति हुई उसने क्या, उसने ऐसा भी कहा है कि जिस व्यक्ति के केवल ज्ञान हो जाने के पश्चात 6 महीने का काल बतलाया कि 6 महीने से ज्यादा काल शेष हो उसके तो केवली समुद्रात नहीं हो, और 6 महीने से कम काल शेष हो तो उसके केवली समुद्रात की अनिवार्यता बतलाया। तो कई तरह के नियम बनते हैं उसके अंदर, कई तरह की बातों का उल्लेख किया है। चलिए यहाँ तो ये कह रहे हैं कि लोक पूर्ण दशा जैसी होती है, माने आत्मा के जो असंख्यात प्रदेश है, जैसे असंख्यात प्रदेश अनादि काल पहले भी थे और अनंत काल तक उठे नहीं रहेंगे, तो तूने आत्मा को किया, आत्मा करता है ये बात नहीं बनती, आत्मा करता ही सिद्ध होता है, ये बात तो बनने वाली नहीं, मिथ्या दृष्टि है। फिर वो कहता है देखो सर, ये करने धरने की बात हो रही है ना, ये आत्मा ऐसा करता नहीं है, आत्मा तो जाहिर की है, तुम तो चमार समर का था, इसमें क्या था, आत्मा तो जायज ही है और सदा जायज ही रहता है, तो कहीं ये बात भी नहीं बनती। अब कहोगे सर ये बात क्यों नहीं बनती, ये तो सच्ची बात है, आत्मा तो जायज था और जायज ही रहता है, इसलिए इसमें क्या प्रॉब्लम है। ये एकांतवादी की मान्यता का निषेध कर रहे हैं, ये कह रहे हैं तू यदि आत्मा को जायज ही मानता है और जायज ही रहता है सदा काल, तो फिर ये जो परिणाम हो रहे हैं राग द्वेष आदि, ये कौन करता है? आत्मा तो जाता ही है उनका, आत्मा राग नहीं करता, आत्मा द्वेष नहीं करता, आत्मा परिणाम नहीं करता, आत्मा नित्या प्रभाव नहीं करता, आत्मा तो जाता रहता है। तो फिर तेरे मत में वही बात सिद्ध होगी कि नित्यात्वादी परिणामों को रागादी परिणामों को कारण करता है। समझना है पॉइंट क्या कहना चाहते हैं भाई, ये न्याय की चर्चा है थोड़ी सी, उपयोग को इजाजत करके समझना पड़ेगा। 355 तक पूरे कोर्स पूरा करूंगा मैं, ठीक है ना, मैं छोड़ूंगा नहीं, जितनी बातें पूरा एक एंगल बतलाऊंगा आपको, किस एंगल से क्या बात कर रहे हैं। ये अनेकांतवाद की चर्चा इसलिए है कि तुम एकांतवाद का पोषण नहीं कर लो, ये समयकार ग्रंथ पढ़ करके अनेक लोग एकांतवाद का पोषण कर लेते हैं, लेकिन समयकार यहाँ अनेकांत की बात बतला रहा है। तो क्या कह दिया कि यदि तुम जायज जायज कहोगे, आत्मा तो जायज है, आत्मा तो जायज है, आत्मा तो जायज है, तो फिर ये बदलाव राग द्वेष कौन कर रहा है? राग द्वेष नहीं करता आत्मा, आत्मा तो राग द्वेष का भी जायज है, इसकी गलती बतला रहे, आत्मा तो राग द्वेष का भी जायज है, नित्यात्म का भी जायज है, जो परिणाम हो रहे हैं सब उसका तो जाता ही रहता है, आत्मा कुछ नहीं करता है, तो फिर ये बदलाव राग द्वेष करता कौन है? वही समस्या खड़ी होगी, कर्म कर रहा, अब राग द्वेष कर्म कर रहा है और आत्मा जायज है, बोले तेरी ये मान्यता मिथ्या मान्यता है, फिर इस कर्म के बल को कौन भोगेगा ये बताओ? कर्म ही भोगेगा, कर्म ने किया है तो कर्म ही भोगेगा, तो तू तो भोगता नहीं है, ये समस्या खड़ी हो जाएगी। इस तरह की बात यहाँ कही गई और इसका निषेध करते हुए, इस पूरे का समापन करते हुए 205 नंबर का एक कलश यहाँ प्रस्तुत किया गया और उसमें ये कहा गया कि सांख्य मत के समान तुम जैन होकर के भी आत्मा को सदा अकर्ता मत मानो, तुम्हें ऐसा मत मानो कि आत्मा सदा ही अकर्ता है, भेद ज्ञान होने के पहले राग का कर्ता मानो और भेद ज्ञान हो जाने के बाद राग का कर्ता मानो। इस बात समझ नहीं आई, भेद ज्ञान हो जाने के बाद राग का कर्ता, इसका मतलब कोई व्यक्ति चौथे गुणस्थान में आया तो राग हुआ कि नहीं होगा, राग का अभाव आगे होगा ऐसा क्या चरित्र होने पर, ग्यारहवें बारहवें गुणस्थान के अंदर राग का अभाव होगा, सभी दुनिया अवस्था में भी राग से है ना, तुम कह रहे हो ज्ञानी होने के बाद में राग का करता है, ऐसा कैसे होगा? तो सुनो भाई, वो राग का कर्तृत्व उसके नहीं है, इसलिए वो आकर ज्ञानी अपने आप को राग का कर्ता नहीं मानता, हो रहा है वो मजबूरी है। समझ रहे, देखो कर्ता और अकर्ता किसे कहते हैं, दो मिनट में बात समझ लो, बुद्धि पूर्वक जो काम को करे वो उसका कर्ता, और अबुद्धि पूर्वक जो काम हो वो उसका करता। मतलब मैं नहीं चाहता फिर भी हुआ, मैं उसका करता हूँ। फिर हमने कहा किसी व्यक्ति के हाथ में कांच का गिलास था और एकदम छूट गया, टक्कर लग गई, तो कोई व्यक्ति ये कहे कि तुमने गिलास तोड़ दिया, वो क्या कहेगा? मैंने तोड़ा नहीं, टूट गया। समझ आ रहा है? तो मैंने नहीं तोड़ा। क्या बात कर रहे हो? हमने देखा है तुम्हारे हाथ की टक्कर लग गई थी, मैं लगाना नहीं चाहता था, चाहता नहीं था ना, इसलिए वो उसका करता है। अब ज्ञानी जीव है, चौथे गुणस्थान वाला है, पंचम गुणस्थान वाला है, छठे सातवें गुणस्थान वाले हैं, राग हुआ, हमने कहा तुम राग के करता हो, मैं नहीं करना चाहता था, हो गया तो हो गया, इसलिए मैं उसका करता हूँ। अज्ञानी जीव राग का करता क्यों है? क्योंकि वो तो राग करता है, राग रूप परिणाम करता है, राग के साथ में उसकी तन्मयता है। ज्ञानी की राग के साथ में तन्मयता नहीं है, इसलिए ज्ञानी राग का करता है। मैं एक बहुत सुंदर एग्जांपल लेकर के बात करता हूँ। जब ये प्रश्न चलता है, ऐसा मानो कोई एक व्यक्ति लकड़ी काट रहा था वो, और लकड़ी काटते काटते क्या हुआ, ऐसे कुल्हाड़ी को उठाता था और लकड़ी से मारता था तो लकड़ी के दो टुकड़े होते थे, फिर ऐसे उठाता था लकड़ी को काटता था, ये उसका काम करते ऐसा ही करना। अचानक क्या हुआ कि उसकी जो कुल्हाड़ी थी वो लकड़ी पर नहीं गिरके पैर से गिर गई, फिर से गिरा लो कहीं भी गिरा लो, लेकिन आपके से गिराने से नहीं चलेगा कि मैं हूँ गिराने वाला। तो उसके पैर से गिर गई, चला रहा था ना, पैर कट गया, डॉक्टर के पास चला गया, और क्या हो गया? डॉक्टर ने पूछा कितने काट दिया, कितने लेने, क्या कहेगा ये पैर कितने काट दिया, किसी ने नहीं, ऐसा कैसे हुआ? काम हुआ है तो उसका कर्ता कोई ना कोई तो होगा ना, पैर कटने रूपी क्रिया हुई है तो उस क्रिया का कर्ता कोई नहीं हुआ, ऐसा कैसे हो सकता है? तुम क्या कर रहे थे उस समय? जैसा मैं लकड़ी काट रहा था, लकड़ी काट रहे थे मतलब कुल्हाड़ी उठा रहे थे और लकड़ी से मार रहे थे कि हाँ, कि यदि वो लकड़ी के ऊपर गिरती तो वो लकड़ी काटी कितने, मैंने, ये लकड़ी पर गिरे तो तुम कहते हो मैंने काटी है, और कुल्हाड़ी यदि पैर से गिर जाए तो तुम कहते हो मैंने नहीं काटा। बात समझ में आ रही है? एक जैसी क्रिया हो रही है, अज्ञानी से भी वैसी क्रिया है और ज्ञानी से भी क्रिया वैसी चल रही है, लेकिन क्रिया चलते हुए ज्ञानी जीव के राग होते हुए ज्ञानी राग करना नहीं चाहता, ज्ञानी के राग होता है भूमिका अनुसार, कैसे? चारित्र मोह की कमजोरी से। तो चारित्र मोह की कमजोरी से ज्ञानी के जो राग होता है, ज्ञानी उस राग का करता, और अज्ञानी जीव के राग होता नहीं है, ये राग का करता है, ये उस रूप परिणमन करता है, ये तन्मय होकर के राग मिथ्यात्वादी परिणामों के साथ में अभी तन्मय होकर के एक में होकर के नित्य होकर के क्रिया को करता है, इसलिए अज्ञानी जीव राग का करता है। ज्ञान हो जाने पर पूरे से राग करता है। ये बात 205 नंबर के कलश में कह दी गई, एक बहुत महत्वपूर्ण प्रकरण इन गाथाओं की टीका लिखते समय जैसेना चाहिए की टीका में है, उसका मैं यहाँ उल्लेख करना चाहता हूँ। कर्ता और अकर्ता के संदर्भ में उन्होंने चर्चा उठाई है इस तरह की कि राव आप ये बतलाओ कि ये जो आत्मा है, ये आत्मा, ये जो द्रव्य प्राण दिखते हैं शरीर आदि, इन द्रव्य प्राणों से भिन्न है या अभिन्न है? आत्मा अलग है और शरीर आदि अलग है, इनको हम सर्व का अलग माने के सर्व का एक माने, ऐसा एक प्रकरण जैसे न जाने की टीका में उठाया। यहाँ ये चर्चा उठाई इन्होंने तात्पर्य रत्न में, कोई कहता है, तात्पर्य रत्न की पंक्तियां पढ़ता हूँ, जैसे न जाने की टीका की पंक्तियां, कोई कहता है कि जीव से प्राण भिन्न है या अभिन्न? यदि अभिन्न माने जाते हैं शरीर और आत्मा, इन दोनों को द्रव्य काम तो समझ लिया ना, पांच इंद्रियां, तीन बल, आयु और वाचस्पति, ये जीव से भिन्न है या अभिन्न है, माने जीव रूपी है या अलग है ये चीज। तो यदि ये अभिन्न माने, ऐसा समझो आप कि शरीर और आत्मा ये सब अभिन्न ही है, तब तो क्या होगा, जब जीव का विनाश नहीं होता तो फिर प्राणों का भी विनाश नहीं होता। चिंता हिंसा के संदर्भ में बात करते हैं, जो प्रभात आदि प्रकृतियों की चर्चा की थी ना, इस संदर्भ में चिंता करते हुए जैसे ना क्या कह रहे, शाम के मत से कल्पना कितनी में काम कर रहा है, ऐसा चिंता कितने की प्राणों का विरोध हो जाए, हिंसा हुई, हिंसा होती है कि नहीं होती है। ये कह रहे हैं यदि शरीर और आत्मा को एक ही माना जाए, यदि द्रव्य प्राणों से आत्मा को अभिन्न मान दिया जाए तो आत्मा तो मरता नहीं है, और शरीर आदि के साथ में उसको अभेद करो तो शरीर आदि प्राणों का भी विनाश नहीं होगा, तो फिर हिंसा किसकी हुई, ऐसी स्थिति में हिंसा ही नहीं होगी। नहीं समझ में आएगा क्या कह रहे हैं, आत्मा जैसा है यदि उसके साथ में शरीर आदि अभेद है तो आत्मा नहीं मरेगा तो शरीर भी नहीं मरेगा, क्योंकि उसके साथ अभेद है, एक रूप है, बिल्कुल एक कर दो उनको दोनों को मिला करके। द्रव्य प्राणों से आत्मा को अभेद कर दिया जाए तो आत्मा के विनाश नहीं होने पर द्रव्य प्राणों का भी विनाश नहीं होगा, तो फिर ऐसी स्थिति में किसी ने किसी को मारा तो मरा कौन, तो कोई नहीं मरा, चिंता ही नहीं होगी। इससे बचने के लिए यदि कोई व्यक्ति ये बात कहे कि प्राण जीव से भिन्न है, शरीर अलग है भाई साहब, प्राणों का नाश हो जाता है, जीव का नाश नहीं होता है, प्राण अलग है और आत्मा अलग है, ऐसा भिन्न भी तो कह सकते हो ना, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। तो किसी ने हिंसा की तो किसकी हिंसा की, इधर मैं कहूंगी हिंसा की। तो कह रहे हैं यदि प्राण जीव से भिन्न है तो प्राणों के नाश होने पर जीव का तो कुछ बिगड़ता नहीं है, ऐसी स्थिति में हिंसा किसकी, जीव का कुछ बिगड़ा ही नहीं तो भी हिंसा नहीं हो पाएगी। दो बातें समझने आई थी नवीन भाई क्या कहना चाह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि आप आत्मा को शरीर आदि से अभिन्न मानो या सर्व से अभिन्न मानो, दोनों ही स्थितियों में हिंसा नहीं होती, सर्व सर्व निषेध कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं, ये जो एकांतवादियों का प्रकरण चल रहा है ना, इसमें पूरे प्रकरण के अंदर लगाना, जो व्यक्ति सर्वथा ऐसा मानता है वो मिथ्या दृष्टि है। आत्मा शरीर से सर्वथा मिला हुआ है ऐसा माने तो भी गलती है, कि क्या गलती है कि आत्मा का नाश नहीं होता तो शरीर आदि का भी नाश नहीं होगा, फिर चींटी को मारा ऐसा कैसे होगा, जैसे आत्मा नहीं मरती ऐसे शरीर भी नहीं मरता, फिर हिंसा ही नहीं होगी। ऐसा नहीं, शरीर आदि तो अलग होते हैं, द्रव्य प्राण अलग होते हैं और आत्मा अलग होते हैं, तो फिर हमने कहा आत्मा तो कभी मरता ही नहीं है, तो फिर शरीर आदि के नियोग होने से भी मरण नहीं हुआ, फिर भी हिंसा सिद्ध नहीं, तो फिर क्या करें कैसी स्थिति में। इसलिए तेरे मत के अनुसार, तेरी मान्यता के अनुसार जो तू ऐसा कहता है कि ये अभिन्न और भिन्न वाली जो बात सर्वथा मानता है ये क्या है, तो फिर आप बताओ वस्तु स्थिति क्या है। वस्तु स्थिति ये है कि ये द्रव्य प्राण आत्मा के है भी पर नहीं भी, ये वस्तु स्थिति माने आप उनको अभेद भी मानो और भेद रूप भी मानो, दोनों बातों को स्वीकार करना पड़ेगा। व्यवहार में से शरीर और आत्मा एक है और निश्चय से शरीर और आत्मा अलग अलग है, तुम इस बात को स्वीकार करो, ऐसा कहते हैं। फिर प्रश्न उठाया फ्रेंड ने कि साहब यदि ऐसा है तो फिर तो ये हिंसा भी जो होती है व्यवहार में है शरीर और आत्मा एक, तो फिर जो हिंसा भी होती है वो भी व्यवहार की होगी, निश्चय से तो हिंसा हुई नहीं, क्योंकि निश्चय से तो शरीर और आत्मा अलग अलग है। बात समझ में आई, सके शरीर और आत्मा निश्चय से तो अलग अलग है, निश्चय से पहले से अलग अलग है, तो फिर किसी ने किसी को मारा ये बात ना बनेगी, पहले से अलग से अलग ही हुए तो निश्चय से तो हिंसा होती नहीं है, व्यवहार से होगी हिंसा, क्योंकि व्यवहार से शरीर आत्मा एक है, व्यवहार से हिंसा होती है और व्यवहार झूठा है, तो फिर चल रहा है तो हिंसा हुई, तो फिर पापी क्यों भोगेंगे हम, व्यवहार से हिंसा हुई है, मेरे माध्यम से चींटी मर गई, मेरे माध्यम से मच्छर मर गया, मेरे माध्यम से किसी की हत्या हो गई, व्यवहार के लिए निश्चय से तो होती नहीं है, जीव मरता नहीं है और शरीर का जीवन को कोई मतलब नहीं है, तो फिर मुझे पाप भी नहीं लगना चाहिए। तो बहुत सुंदर जवाब दिया जैसे नाचार्य ने कि सुन, व्यवहार से हिंसा हुई है ना, तो तू नरक में जाकर के तेरे डंडे पड़ेंगे, वो भी व्यवहार से पड़ेंगे। फिर नरक में जाकर के उसका फल भोगेगा ना, वो भी व्यवहार से भोगेगा, तेरे को नरक निरोध अवस्था की प्राप्ति होगी। अब यदि तू ये चाहता है कि व्यवहार से भी मैं नरक में नहीं जाऊं और मेरे डंडे नहीं पड़े, तो तू व्यवहार हिंसा का भी त्याग कर। समझ मेरी बात क्या कहना चाह रहे? तू ऐसा कह करके सही नहीं हो सकता कि आत्मा तो अकर्ता है, आत्मा तो शुद्ध है, है आत्मा तो किसी का करता ही नहीं है, ये जो हो रहा है बाद में जवान से हो रही है, जड़ की क्रिया जड़ में हो रही है। नहीं भाई साहब, ऐसा नहीं चलेगा। ये जो जड़ की क्रियाएं हो रही है, इन क्रियाओं के बाद में तेरे परिणाम जुड़े हैं और उन परिणामों के कारण तेरे जो कर्म बंद होता है, उन कर्म बंद के फल को भी तू ही भोगेगा। जो कर्म बंद हुआ है, कर्म बंद के बल को तू ही भोगेगा, उसे भोगने वाला कोई दूसरा नहीं होगा। इस तरह से कर्म से मत की बात का निषेध किया। जब हमने कही कि तूने किया और तू ही भोगेगा, तो एक बौद्ध दर्शन वाले और खड़े हो जाते हैं, एक नया दर्शन, जिसमें कई लोग अपने में ऐसे हैं, अपने में कई लोग जो क्षणिक वाद को मानते हैं, कहते हैं नहीं भाई साहब ऐसा नहीं है, कर्ता कोई और है और भोक्ता कोई और है, आत्मा तो पर्यायों की अपेक्षा से देखो तो खड़े थे, जिस पर्याय ने किया वो पर्याय भोगने के लिए बचेगी का भोगने की दूसरी पर्याय किया, इस पर्याय ने था और भोगने की दूसरी पर्याय। तो आचार्य देव आगामी गाथाओं में कहते हैं कि तेरी ये मान्यता बौद्ध दर्शन वालों में की जाएगी। क्या कह रहे हैं? सांख्य दर्शन और बौद्ध दर्शन दो अलग अलग दर्शन है, दोनों दर्शन एक दूसरे के विरोधी है। सांख्य दर्शन वाले मानते हैं कि वस्तु सर्वथा नित्य है। क्या कहा? वस्तु सर्वथा नित्य है। और बौद्ध दर्शन वाले ऐसा मानते हैं कि वस्तु सर्वथा अनित्य है, क्षणिक है, क्षणभंगुर है। माने बौद्ध दर्शन वाले ऐसा मानते हैं कि कर्ता है वो भोगता नहीं है, और जो भोग रहा है उसने किया नहीं था। क्षणिक वस्तु बदल गई, क्षणिक नष्ट हो गई, वस्तु नष्ट हो गई, तो जिसने किया था उसने नहीं भोगा। मैंने समझ लो किसी व्यक्ति ने 20 साल की उम्र में जो पाप किया और 45-50 साल की उम्र में या 70 साल की उम्र में उसको सजा मिली, तो 20 साल की उम्र में जो अपराध किया था वो अपराध करने वाला कोई और था, और 70 साल की उम्र में जो सजा मिली है उस अपराध के फल को भोगने वाला कोई और था। बौद्ध दर्शन वाले ऐसा कहते हैं अपराध किया था युवा ने और फल भोगता है वृद्ध। क्या? तो जिसने अपराध किया था वो फल नहीं भोगता है, फल भोगने वाला दूसरा है, ऐसा बौद्ध दर्शन वालों की मान्यता है। उस बात को बतलाने के लिए और उसका निषेध करने के लिए आगामी दो कलश और दो कलशों के साथ में चार गाथाएं ये यहाँ दी है। अभी अपना जो कोर्स है, अभी इस प्रवचन का जो चलता है, इसमें अपन 348 नंबर गाथा तक पहुँचेंगे। घबराना मत आप, मैं तो दो वाक्यों में भी खत्म कर सकता हूँ, मुझे आता है कैसे खत्म करना। पूरे समय काल की 415 गाथाओं को 4 लाइन में खत्म कर सकता हूँ। द्रव्य कर्म भाव कर्म और नौ कर्म से रहे त्रिकाली गुरु जय भगवान आत्मा वही अनुभव करने योग्य है, तो उसमें ही नित्य विहार कर, उसमें ही स्थित हो, उसमें लीन हो, तो परम सुख की प्राप्ति तुझे होगी। हम क्या करें? 415 गाथाओं को जब 11 गाथाओं के अंदर 12 गाथाओं में आचार्य पुलुकुंड स्वामी स्वयं ही समेट लेते हैं, तो उसको इसमें समेट लिया ना। जीव जिदा सुदगन जिदा यही तत्व को सार, जीव अन्य सुदगन अन्य तत्व संग्रह है, यद अन्य तत्व है, यही चलाई थी मैंने 2-4 साल पहले, इन दो पंक्तियों के संदर्भ में चर्चा हुई थी। तो ये सार बतला दिया, सारे जिनागम का सार ये है, लिखकर रूप बात बतला दी। तो चलो अपन ये पढ़ते हैं ये श्लोक, जो 206 नंबर का कलश और 207 नंबर का कलश है, इसमें क्या बात कहते हैं। मैं हिंदी पद्यानुवाद पढ़ता हूँ, है ना? देखो, जो करता वह नहीं भोगता इस जगती में, ऐसा करके कोई आत्मा चरित मान कर नित्य रूप से सदा प्रकाशित स्वयं आत्मा मानो उनका मोह निवारण स्वयं कर रहा। क्या कह रहे हैं आप, कैसी बात कह रहे हैं, बड़ी मजेदार बात है। ये कह रहे हैं कि कोई व्यक्ति आत्मा को क्षणिक मानकर जो ऐसा मानते हैं कि इस जगत में जो करता है वो नहीं भूखता, ये कौन लोग हैं जो करता है वो नहीं भूखता ऐसा मानने वाले। आप कहेंगे बौद्ध लोग हैं कि नहीं नहीं हम लोग भी हैं, चुनाव हम तो ऐसा नहीं मानते। कि आप लोग हम लोग भी ऐसा मानते हैं। कैसे मानते हैं कि आप ऐसा नहीं करते कि पिछले कर्मों का फल भोग रहे हैं, पिछले जन्म के कर्मों का फल भोग रहे हैं, अभी जो कर्म कर रहा है इसका फल आगे भोगेगा। तो कर कौन रहा है कि मनुष्य, और भोगेगा कौन कि नारकी। नहीं मानते हो आप ऐसा, तो हमारी मान्यता हो ही नहीं। किया तो हमने और भोगेगा कौन, हमें भी भोगना पड़ेगा। नरक में जाएगा तो नरक ही भोगेगा, स्वर्ग में जाएगा तो देव भोगेगा। तो देव गति से जीव ने भोगा, और किया कितने का, मनुष्य गति से जीव ने भोगा कितने की, नरक ही ने नरक में, और किया कितने का कि मनुष्य ने। तो करता है मनुष्य और भोगता है नरक ही, तो मनुष्य करके मनुष्य नहीं भोगता। ऐसा जो लोग मानते हैं कि इस जन्म का फल अगले जन्म में मिलेगा और ऐसा होगा और ऐसा ऐसा सब, तो उन सबका यहाँ निषेध किया कि तुम कैसी बात करते हो पागलों जैसी। तुम भक्ति को कर्म का चरित मानते हो, ये आत्मा तो अपने नित्य रूप से तुम्हारे उस मोह का स्वयं निवारण कर रहा है। तुम्हारे ये जो फीलिंग में जो ये बात आ रही है कि ये वही है, तो निश्चितता से अपने आप को समझ में आ रही है ना कि मैंने ये खाया था इसलिए मेरे पेट में ऐसी गड़बड़ हो गई, तो मैंने खाया था और मेरे ये गड़बड़ हो गई। तो ये जो नित्यता ध्यान में आ रही है, इस नित्यता से क्षणिक वादता अपने आप ही खंडन हो जाता है। ये बात 206 में कही। अब 207 में क्या कहते हैं, वृत्तिमान हो नष्ट वृत्तों के भेद से करता भोक्ता भिन्न इस भय से मानो नहीं। क्या बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में कह दिया भाई साहब, वृत्तियों के भेद से वृत्तिमान में भेद मत मानो। वृत्तियों के भेद से मतलब कौन जा रहे, पर्यायों के भेद से द्रव्य में भेद मत मानो। ये कह रहे हैं पर्याय का तो भेद है, पर्याय अपेक्षा से देखोगे तो वस्तु अलग अलग है, लेकिन द्रव्य की अपेक्षा से देखो तो वही वस्तु है। ये कहना चाह रहे, ये जो बातें दो कल्पों में कही है ये दोनों कलश आगामी चार गाथाओं की स्थान का की है। मान लो आपको आगामी चार गाथाएं पढ़ लेते हैं अपन, 345 यानी 47 और 48। बौद्ध मत की मान्यता का खंडन करते हुए क्या बात कही है, देखो बोलिए सब जाने। जो भोगता वह करे अथवा अन्य यह एकांत नाम, कुछ से नहीं जो करे भोग वही अथवा अन्य यह चार गाथाएं कही है। चारों गाथाओं में मुख्य रूप से
उस अज्ञानी निश्चय दृष्टि की क्षणिकवाद संबंधी मान्यता का खंडन किया है। जो सर्व का क्षणिक मानते हैं ना वस्तु को, उसका खंडन किया है। ये कह रहे हैं आत्मा वस्तु स्थिति तो यह है कि आत्मा कुछ पर्याय से नष्ट होता है और कुछ पर्याय से नष्ट नहीं होता, ये तो है वस्तु स्थिति। माने आत्मा नष्ट होता भी है और नहीं भी होता है, कि कुछ पर्याय से नष्ट होता है और कुछ पर्याय से नष्ट नहीं होता है। तो क्या मतलब था नहीं समझ में आई कि देखो भाई पर्याय दो प्रकार की होती है, एक सहभावी पर्याय और एक क्रमभावी पर्याय, दो तरह के पर्याय है। तो सहभावी पर्याय कहते हैं गुणों को और क्रमभावी पर्याय कहते हैं उत्पाद लेने वाली पर्याय को। तो आत्मा कुछ पर्यायों से नष्ट होता है ऐसा जो कहा है, यह बात क्रमभावी पर्यायों की अपेक्षा से, उत्पाद लेने वाली पर्यायों की अपेक्षा से, और यह आत्मा कुछ पर्यायों की अपेक्षा से नष्ट नहीं होता है, ये बात कहीं सहभावी पर्याय माने गुणों की अपेक्षा से। माने ऐसा कह सकते हैं द्रव्यार्थिक नय से ये वस्तु नष्ट नहीं होती और पर्यायार्थिक नय से वस्तु नष्ट होती है। समझ आगे बस, द्रव्यार्थिक नय से वस्तु कभी नष्ट नहीं होती, नित्य रहेगी, और पर्यायार्थिक नय से नष्ट होती। देखो अब ये जो कह रहे थे एकांत से कोई व्यक्ति ऐसा मानता है, 345 की जो बात कही है, ये कहते हैं जो भोगता है वो ही करे, जिसने किया था वो ही भोगता है, तो बोले ये एकांत है। ऐसी वस्तु स्थिति नहीं, जो करता है वो ही भोगता है, ये बात बराबर नहीं। क्यों? क्योंकि जिस पर्याय ने किया था उस पर्याय ने भोगा नहीं, इसलिए एकांत से जो करे वो ही भोगे, ये बात बनती नहीं। फिर दूसरी बात कही 346 नंबर बताने कि जो करेगा उसी ने भोगा था वही भोगेगा, ये बात भी नहीं बनती। क्या बात वही है, सिर्फ बात के बदल करके बात कही है। 345 में कही जो भोग रहा है उसी ने किया था, एकांत से ये बात नहीं है। माने भोग रहा है ये वर्तमान दिखाई दे रहा है और किया इसी ने था। कोई व्यक्ति पाप का फल भोग रहा है, किसी को सजा मिल रही है, तो क्या कहें इसी ने किया था, इसी के कर्मों का फल इसी को भोगना पड़ेगा, इसी ने किया था इसलिए इसको भोगना पड़ रहा है, किया था, ठीक है ना। ये बात की बात करते हैं और 346 नंबर गाथा में कह रहे हैं ये जो कर रहा है यही भोगेगा। ये भोग रहा है इसका मतलब पहले किया था, और 346 में कहा ये कर रहा है ये आगे भोगेगा। उन्होंने कहा ये दोनों प्रकार का एकांत नहीं बनता, एकांत से मानोगे तो नहीं बनेगा, अनेकांत बनाना पड़ेगा। फिर 345 में क्या कहा, जो करे और भोगे नहीं, उस बात को बदल करके कह दिया कि जो करेगा वो बिल्कुल नहीं भोगेगा ऐसा मान लेता हूँ मैं। फिर कहा तो भी कोई जैनियों का विरोधी है, मैं करूँ क्या, समझ में नहीं आ रही है, जो करता है वही भोगता है ऐसा कहो तो भी करे एकांत, जो करता है वो नहीं भोगता है ऐसा करे तो भी करे एकांत। फिर कह रहे जो करेगा वो नहीं भोगेगा ये ऐसा मानते तो भी कहते हैं जैनियों का विरोधी है। तो बात सच्ची क्या है कि सच्ची बात तो ये है कि सर्वथा मत मानना, समझ आ रही है बात, सच्ची बात तो ये कि तू सर्वथा मत मानना। फिर 348 नंबर गाथा में कह दिया कि करता कोई है और भोगता कोई है ऐसा मानता है तो भी तू जैनियों का विरोधी। देखो भाई दुनिया में बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो कर्ता और भोक्ता को भिन्न भिन्न मानते हैं। कभी कभी आप लोगों के मुंह से ऐसे वाक्य नहीं निकलते क्या करें साहब उनकी करनी के पर हमें भोगने पड़ रहे। ये 348 नंबर गाथा पढ़ो आप क्या करें, उनकी करनी के पर तुम्हें भोगने पड़ रहे हैं। नहीं भाई साहब ऐसा नहीं होता, करे कोई और भोगे कोई ऐसा नहीं होता। और मैंने बात कह दी थोड़ी सी चोट नहीं लगे किसी को, माने जो भी वर्तमान में अपने को एक फल मिल रहा है क्या, ये सब गुरुदेव के पुण्य प्रताप का फल मिल रहा है। है नहीं नहीं ऐसा, तो उनके सभी प्रकार का फल हम नहीं भोगे। 348 नंबर गाते गिरे नहीं है भाई साहब क्या, उनके पुण्य, उनके पुण्य से कोई किसी को किसी के पुण्य का फल नहीं मिलता, सबको अपने अपने कर्म का फल मिलता है। किसी का फल किसी को भोगना पड़े ऐसा नहीं है, अपराध करके गए तुम्हारे पिताजी और फल भोगने को मिल जाए बेटे को, ऐसा नहीं होता। ऐसा ही हुआ था, उन्होंने किया था सारा घोटाला, तो उन्होंने कर रखा था, और जब ये आमद पड़ी कि तब तक उनका बदवास हो गया था तो पुलिस मुझे पकड़ के ले गई, तो उनके कर्म का फल मुझे भोगना पड़ा ना, ऐसा नहीं है। मैंने ये कहना चाह रहे हैं दाताओं के अंदर कुल मिलाकर के निष्कर्ष स्वरूप बात कहता हूँ कि करे कोई और भोगे कोई ऐसा नहीं था। ऐसा भी होता है कि करे कोई और भोगे कोई, कथनचित करे कोई और भोगे कोई, और कथनचित जो करे वही भोगे, ऐसा मानना। जैसे देखो ऐसा कहा जाता है कि साहब गलती जीत करती है और डंडे माथे पड़ते, गलती कितने की, जीव ने गालियां बोली अब कर दीजिए और डंडे बन कर, तो गलती इतने की और भोगा इतने, करे कोई और भरे कोई। तो कहते हैं हाँ भाई करे कोई और भरे कोई, लेकिन समझना जिसके डंडे पड़े हैं माथे पर वो माथा जिसका था ना, गलती उसी की जीव ने की थी। तो जिसने किया उसी ने भोगा, यह बात भी सही है, और जिसने किया उसने नहीं भोगा ये बात भी सही है। पर्यायों की भिन्नता से बात करते हो, पर्यायों की भिन्नता से तो करती दूसरी पर्याय है और भोगती दूसरी पर्याय है, ये बात सही है। और पर्यायों की भिन्नता में देखकर द्रव्य की नित्यता से बात करते हो तो जो द्रव्य की पर्याय करती है उसी द्रव्य की पर्याय भोगती है, जो करे वही भोगे। इस तरह से ये मार्मिक बातें यहाँ बौद्ध दर्शन का खंडन करते हुए सिद्ध की है। कुछ प्रकरण और बचा है, जो एक प्रवचन है ये अपने पास में, अपन 355 तक का कोर्स पूरा कर लेंगे। अभी की बात को यही विराम देते हुए यही अपेक्षा रखता हूँ कि किसी भी विषय को सर्वथा अंगीकार मत करना, जैन दर्शन अनेकांतवादी है, जहाँ जिस विवक्षा की जो बात कही हो उस विवक्षा से उस बात को स्वीकार करना। Thank you.